आइए देखते हैं कि हमारे असलाफ में इखलास कितना था, कैसे था, और वो इसको कितना अहम देते थे। इसमें इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत सारी अमली रहनुमाई होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम सुनते हैं, जैसे अभी बार बार हम इखलास की बात करें तो हमें समझ नहीं आ रहा इखलास होता क्या है, लेकिन जब हम दूसरों की ज़िंदगी से उसको देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सिदको वफा के पैकर मुखलस लोग अपनी सीरत और वाकयात के आईने में, यानी वो लोग जो सच्चे भी थे, बावफा भी थे, वो किस तरह से मुखलस थे। तो पहली बात है कि एक दो नहीं, लाखों उम्मते मुस्लिमा के पास ऐसे हीरे मौजूद हैं कि जिनके अंदर इखलास भी था, सच्चाई भी थी, और अगर इनकी कहानियां ही लिखने लग जाएं और पढ़ के सुनाने लग जाएं तो वो भी अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है। बल्कि मैं आपसे ये बात कह रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि जो माजी में अल्लाह की मदद उतरती थी मुसलमानों के साथ, उसकी वजह ये मुखलसीन थे। ये वो लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक संगे मील रखती हैं। जैसे आप साइन बोर्ड्स देख कर किसी जगह पहुँचते हैं ना, इसी तरह इन लोगों की ज़िंदगियों को देखते देखते हम इखलास तक पहुँच जाते हैं। कभी कभी दूसरे को अच्छा काम करता देख कर भी अच्छा काम करना आ जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों में अंबिया कराम थे, उनके इखलास में तो किसी को शक नहीं है, और अंबिया कराम में से भी सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। सिर्फ 23 साल के अरसे में जो मदद हुई उनकी और दुनिया में इस्लाम के झंडे गड़े, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलास था। हर नबी ने अपनी कौम को यही कहा कि ऐ कौम, मा असलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता इस काम का। और हर नबी की दावत क्या थी? उबदुल्ला। तो अम्बिया कराम की ज़िंदगी तो हम सब के लिए मॉडल है ही, लेकिन हम देखेंगे सहाबा और उसके बाद के चंद लोग, ताकि हम कहें कि जी ये तो हमारे बराबर के लोग हैं, नबी तो नबी होता है, ठीक है मान लेते हैं। तो उम्मतियों में से सबसे आला दर्जा सहाबा कराम का था, और सहाबा कराम में अगर आप देखें तो इतनी चीज़ें हैं कि जिनको देखकर वाकई इंसान को ये यकीन आ जाता है कि हम जन्नत में चले भी गए तो इनके मुकाम को नहीं पाएंगे। उन हालात में सहाबा ने नेकियां की थी जब इस्लाम की तारीख अभी बन रही थी। ये नोट करने की बात है, सहाबा कराम ने जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उस वक्त इस्लाम के नाम पे 1000 साल की खूबसूरत तारीख नहीं थी, क्योंकि तारीफ और शोहरत अपनी जगह कशिश रखती है। बहुत सारे लोग जो हक को देखकर नहीं भी आते ना, तो वो तारीफ और शोहरत को देख के आ जाते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उबई आया बदर की फतह के बाद। लेकिन सहाबा कराम ने तो उस वक्त अल्लाह के नबी का साथ दिया जिस वक्त मारें पड़ती थी और इस्लाम के नाम पे जान देने तक से भी गुरेज नहीं किया जाता था। इसीलिए आप हमेशा सहाबा की नेकियों के साथ ये जरूर पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे कितना किया। मसलन अबू बकर सिद्दीक सारे घर का सामान ले आए, ये कहीं नहीं पढ़ेंगे कि सामान कितना था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वर्थ क्या थी। क्यों? सहाबा के दौर में जो नेकियां हुई ना, उसकी क्वांटिटी नहीं चाहिए, वो हालात, कि जिन हालात में कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है। जिस वक्त इस्लाम का शेयर नीचे गिरा हुआ है, अभी तक लोगों ने इसकी खूबसूरती देखी कोई नहीं, लोगों को एक कंप्लीट वे ऑफ लिविंग दिखा नहीं, उस वक्त जो आए हकीकत में इखलास की वजह से जमे रहे। अगर हजरत बिलाल में इखलास ना होता तो वो अपने मालिक उमैया का एक कोड़ा भी ना सह पाते, और वो जल्लादों के कोड़े खा खा कर भी अगर आहद आहद कहते थे ना, तो वह इखलास की कुव्वत थी। हम सब के जिस्म में कई चीज़ें हैं ना, जैसे कैल्शियम है, ब्लड है, डॉक्टर्स कहते हैं ना किसी में ये कमी हो गई वो कमी हो गई, जैसे कोई एनेमिक है अगर ब्लड की कमी है तो सुस्ती आने लगती है और ताकत नहीं रहती है ना, ये सबके साथ ब्लड प्रेशर लो होता है तो ड्राउजी फील होता है, स्लीपी इंसान फील करता है, शुगर ज़्यादा हो जाए तो और मुसीबत, और कम हो तो और, है ना। बस इसी को समझ लें, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो इस वक्त समझ रहे हैं हम लोग। सहाबे कराम के हालात बड़े नागवार थे, इस्लाम पर जब ऐसे हालात आ जाए कि इस्लाम के साथ कोई बहुत प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा भी, अभी कोई इस्लाम के साथ बहुत ज्यादा खूबियां नहीं लगी हुई, तो थोड़ी सी नेकी भी काम आ जाती है। जो हालात सहाबा कराम के दौर में थे ना इस्लाम के, वल्लाही वो आज के दौर में भी हैं। 2015 में आज मैं और आप ये बात कहकर सुन रहे हैं ना, याद रखिए मैं और आप तारीख के उस दौर में हैं कि दोबारा वही हालात पैदा करना बहुत आसान है। आज के दौर में लोग इस्लाम से दूर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता इस्लाम के लिए काम करना। ये फैमिलियर है कि लोग जॉब करें, ये फैमिलियर है कि लोग स्टडीज करें, ये फैमिलियर है कि औरतें शॉपिंग करें, बाजारों में जाए। इट्स वेरी इजी, लोग आधा दिन सो के गुजार दें, इट्स वेरी ओके। ये सब जिसको आप कहते हैं ना, ये चीज इन है, लेकिन आज के दौर में इस्लाम का काम इन नहीं है, कुरान का काम इन नहीं है। तो आज के दौर में वो दौर है कि जो अबू बकर और उमर को पैदा करती है, उस्मान और अली को पैदा करती है, और खास तौर पे जो आज के दौर की माएं हैं ना, उनके पास अब दोबारा वो एक फिर मौका आ गया कि उनकी गोदों से उमर निकलेंगे और अबू बकर निकलेंगे और उस्मान निकलेंगे। और ये कैफियत पिछली 20-25 सालों से शुरू हो गई उम्मत मुस्लिमा की, अल्हम्दुलिल्लाह। कि वो दूरी बतलाईहिमुल ज़िल्ला वल मस्कना था ना जीव का, तो जिल्लत से मुसलमान निकल आए हैं अल्लाह के हुक्म से। अब बस थोड़ी सी मस्कनत रह गई है और आसार दिखा रहे हैं कि ये सदियां अब इस्लाम की सदियां हैं। तो लिहाजा अगर आज मैं और आप चाहते हैं कि वही मदद हो इस्लाम की जो कल थी, तो हमें आज वही सबक पढ़ने पड़ेंगे जो उनके थे। इसके बाद आप देखिए कि ताबईन और तबा ताबईन, उनमें से अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाक्य सुनाती हूँ आपको। इखलास उनमें कैसे था, तफसीली लफ्जों को छोड़े बगैर मैं सिर्फ बीच का एसेंस दूंगी, क्योंकि बुक आपके पास होगी तो इंशाल्लाह डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। इनके बारे में कोई लिखते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ एक जंग में रूमियों से लड़ रहा था। मैं इनके साथ रूमियों के दरमियान रोम में मौजूद था। दुश्मनों ने यलगार कर दी, यानी एक ऐसे हालात है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे वो रोमन जो उस दौर के आप कह लीजिए कि सुपर पावर थी, उनसे लड़ रहे थे। जब दोनों तरफ के ग्रोहों ने अपनी सफें दुरुस्त कर ली और दोनों ग्रोह बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हुए, तो दुश्मनों की सफ में से एक शख्स निकला जिसने दूसरों को मुकाबले की दावत दी। क्या जंग करते हैं, जिसके मुकाबले के लिए पहले दुश्मनों की तरफ से निकला, तो मुकाबले में एक मुसलमानों का शख्स निकला और दुश्मन पर शेर की तरह झपट पड़ा और थोड़ी देर में दुश्मन का काम खत्म कर दिया। इसका बदला लेने के लिए दुश्मन से एक और शख्स उठा, इसने उसको भी मार दिया। फिर वही निकला, तीन लोग उधर से यके बाद दीगरे आते गए और एक ही मुसलमान सबको मारते गए। अब शोहरत फैल गई कि एक शख्स ने तीन बड़े बड़े दुश्मनों को मार दिया, तो लोगों ने सोचा कि जरा जाके देखे तो वो कौन है। लेकिन जब जाके देखा तो वो शख्स था जिसने अपने मुंह पर ढाटा बांधा हुआ था, उसने अपना चेहरा छुपाया कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं लोगों को बताऊंगा। इस किस्से के रावी कहते हैं कि मैं भी उन लोगों में मौजूद हूं जो इस शख्स की शिनाख्त की गरज से दीवानावार जमा हो रहे थे, लेकिन जब मैंने इस मर्द की आस्तीन पकड़ ली, यानी मैंने उनको देखना चाहा कौन है, तो मुझे पता चल गया कि वो अब्दुल्ला बिन मुबारक है। चुनाचे उन्होंने निकाब पोशी की हालत में फरमाया, तुमने मुझे बेनकाब करने के लिए जो मेरा चेहरा खोला, इसकी वजह से तुमने अबू उमर मुझे शर्मिंदा कर दिया। यानी वो चेहरे छुपा के निकलते थे कि लोगों को हमारी नेकियों का पता ना चले। ये तारीख बगदाद का वाक्य। जिनको अपनी नुमाइश नहीं करनी होती, वो पीछे रहना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो सामने आ जाए, उसमें तो खतरा ज्यादा है। इसी तरह हसन बसरी ताबईन में से थे, ये कैसे दिखावे और नमोदर नुमाइश से परहेज करते थे। इनका एक एक लफ्ज जो है ना, वाकई गोल्डन वर्ड्स की तरह आप लिख सकते हैं। कहते हैं क्या ही अच्छा हो कि इंसान हाफिज़े कुरान हो और लोगों को पता भी ना चल सके कि इसने कुरान हिफ्ज किया। फिर कहते हैं क्या मुनासिब बात होती कि इंसान को उलूम शरिया में तफक्को हासिल हो और लोगों को ये महसूस ना हो सके कि ये मुफ्ती है। आज तो लफ्ज है ना, मुफ्ती मुफ्ती आजम फुला फुला फुला, कहते हैं इंसान हाफिज है पता ही ना चले, इल्म मौजूद है लोगों को पता ना चले। कहते हैं क्या ही अच्छा हो कि इंसान घर के अंदर तवील से तवील तर क्याम करे, लंबे लंबे क्याम करे और मिलने वालों की आमदो रफ्त लगी हो मगर लोग महसूस ही ना कर सके कि ये शख्स तवील क्याम करने वालों में से है। मैंने इस दुनिया रंगो बू में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो अगर कोई काम छुपकर करना पर कादिर होते तो वो छुपकर ही करते और उसको जाहिर करने से रुकते। आप सोचिए, आज तो हमारे नामों के साथ लगता है ना, हाजी, फिर अगला हज कर ले तो अलहाज। हाँ, इसी तरह से हिसाब के लाके तो असलाफ इससे रुकते थे। इसी तरह हमारे बड़े जो थे वो दुआएं करा करते थे, मनाजात करते थे, लेकिन उनकी आवाज घर की चार दीवारी के बाहर सुनाई नहीं देती थी। उनका अपने रब के साथ सरगोशी का मामला होता था, जैसे सूरत अलराफ 55 में आता है कि अपने रब को दुआ और मनाजात किया करो गिड़गड़ा कर और आहोजारी के साथ और चुपके चुपके खुफिया खुफिया भी। इसी तरह अली बिन बेकार कहते हैं, जाहिद थे ये, बहुत बड़े आबिद भी थे, जाहिद थे, यानी दुनिया से बहुत मोहब्बत नहीं करते थे। कहते हैं, मेरे नजदीक शैतान से मिलना इस बात से ज्यादा मौजू है कि मैं किसी ऐसे शख्स से मिलूं जो मेरे सामने चापलूसी करे और जिसकी वजह से मैं अल्लाह की नजरों में बेवकत हो जाऊं। उनको अच्छे नहीं लगते थे वो लोग जो तारीफें करते हैं। जो बंदा तारीफ सुनकर एक्सलरेट हो जाए और तनकीद सुनकर वो कहना चाहिए कि स्लीपिंग मोड में चला जाए, समझ लीजिए कि वो मुखलस नहीं है। इसी तरह अबुल हसन कहतान कहते हैं कि एक मरतबा मेरी बेनाई कम हुई। आप भी सोचिएगा अपने ऊपर, कभी आपको अपनी आंख के आगे जाला महसूस हो या आपको लगे मेरी आई साइट वीक हो रही है, तो हम उसकी कितनी जाहरी तवजीहात देंगे ना, लेट के पढ़ते हैं, सो के पढ़ते हैं, ये हो गया, वो हो गया। कहते हैं, मुझे लगा मेरी बेनाई कम हो रही है तो मेरे जहन में एक सवाल हुआ कि आखिर मुझे ये किस गुनाह की सजा मिली है। फिर मुझे याद आया कि सफर के दौरान मैंने बहुत बातें कर ली थी, तो ये उन बहुत सारी बातों का असर है कि मेरी बिनाई चली गई। हम होते तो कहते किसी की नजर लग गई है, कुछ हो गया। इसीलिए यही अबुल हसन कहते हैं कि मेरी बिनाई के मुतासिर होने का राज यही है कि मैंने उलूमो मारफत की घुतियां सुलझाने की खातिर इल्मो हिकमत का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल में मुझे यही सजा मिली। यानी ये नोट कीजिएगा कि वो बातें किलो काल नहीं की, सफर के दौरान जरा ज्यादा ही इल्मी बातें कर दी तो दूसरों को पता चल गया कि ये एक इल्मी शख्सियत है। हम भी तो महफिलों में बैठ के अपने जौहर खोलते हैं ना, जो पूछे ना पूछे दूसरा जवाब देने को तैयार होता है। कहते हैं, लोगों के सामने मेरा इल्म खुल गया ना, मैंने कुछ ज्यादा ही दीन की बातें खोल के कर दी, तो मैंने ऐसा लगता है कि इखलास की कमी से ऐसा किया है कि लोगों में मेरी बात हुई तो उसकी वजह से मेरी बिनाई कमजोर हो गई। इसी तरह हिशाम दिस्तवाई ये कहते हैं, अल्लाह की कसम ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं किसी दिन इल्मे हदीस की तलब और जुस्तजू में निकला हूं और मेरी नीयत अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी की ना हो। मैं आपसे ही पूछती हूँ, जो 1 साल से आ रहे हैं, हर दिन घर से निकलते वक्त क्या ये नीयत होती है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जा रही हूं, कोई और दूसरा इरादा, कोई दूसरी ख्वाहिश ना हो। और हजरत उमर का कौल बड़ा खूबसूरत है, कहते हैं, जिस शख्स की नीयत खालिस हो, दुआ करें अल्लाह हमारी कर दे, जिस शख्स की नीयत खालिस हो अल्लाह ताला उसके और मखलूक के दरमियान आड़ बनकर उसके लिए काफी हो जाता है। यानी इखलास एक पर्दा है, आप नीयत खालिस करते रहें अल्लाह ताला आपको मखलूक से बचाता रहेगा। और एक बड़ा खूबसूरत वाक्या इस्लामी तारीख का कि मुसलमानों ने एक जंग के दौरान एक किले का मुहासरा किया, दुश्मन किले में बंद थे, मुसलमानों पर तीर और नेजे बचाते रहे। इतने में क्या हुआ कि एक मुसलमान सिपाही था, वो उठा, उसको समझ आ गया कि सामने जाऊंगा कि दुश्मनों के तीर होंगे। उसने एक अजीब सा तरीका निकाला कि उसने जाके जमीन खोदनी शुरू कर दी, सुरंग खोल दी ताकि दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंच जाऊं और रहूं। और ऐसा ही हुआ, उसने सुरंग खोद दी। जब मुसलमानों को पता चला, मुसलमान फौजें उधर से गई, उन्होंने अंदर से जाके किले का दरवाजा खोल दिया, दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो मुसलमान जंग जीत गए। अब लोगों को ये खोज लग गई कि ये काम किसने किया। अब वो बताना नहीं चाह रहे थे, सुरंग खोदी और गायब। हम तो पहले इश्तिहार दें ना, इधर आओ, ये कर रहे हैं, केले कैसे करूं, तुम्हें कैसे बताऊं, और सारे मैं ही करूं और क्या करूं। नहीं, वो कहते हैं कि जब ये सब हो गया तो हजरत मुसलमा जो है उनको लगा एक सस्पेंस कि ये किसने किया। कोशिश करने लगे कौन है कौन है, नहीं मिला। फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, कहते हैं, अल्लाह उस शख्स को जिसने ये सुरंग खोदी है तो अपनी रहमत से खुद ही मेरे पास भेज दे, जिन्हें मैं उसको देखना चाहता हूँ कि जिसने इतना बड़ा काम करके कोई टाइटल नहीं लिया। कहते, मेरी दुआ कबूल हुई। रात के अंधेरे में एक शख्स ने हजरत मुसलिमा के घर का दरवाजा खटकाया और एक शर्त लगा दी कि अगर इस शख्स ने इनको अपना नाम पता बतला दिया तो वो इस दिन के बाद तलाश करने की कोशिश ना करें। पूछा कौन हो, का नाम इस सूरत में बताऊंगा कि तुम मुझे बाद में तलाश ना करना। इन्होंने शर्त मान ली तो उस शख्स ने अपना पता बताया, कहा वो वही है जिसने सुरंग खोदी। हजरत मुसलमान जब दुआ मांगते तो कहा करते थे, अल्लाह इस सुरंग खोदने वाले के साथ मेरा हशर फरमाना। क्या खूबियां थी उसकी, इखलास था, नेकियों को छुपाना चाहते थे और उनको अकेले में किए हुए अमल लोगों के बीच में किए हुए अमाल से ज्यादा अच्छे थे। इसी तरह खशियत इलाही में रोने के आसार छुपाने के लिए बहाना करते थे कौन, अय्यूब। कहते हैं जब हदीस सुनाने बैठते तो बाज़ बार रिक्कत तारी हो जाती, रोना आता जैसे कुरान सुन के कभी आता है, तो आंखें जब डूब डुबाती आंसू उसमें होते ना तो अब लोगों को दिखते, तो लोगों से छुपाने के लिए कि मेरे दिल पर इस हदीस का असर हुआ है और मैं रो रहा हूं तो खंखारना शुरू कर, ऐसी आवाज बनाते खांसी की, और फिर एकदम कहते मुझे कितना शदीद जुकाम हो गया। यानी कि लोगों को ये ना पता चले कि मैं अल्लाह की खशियत से रो रहा हूं, इतनी बड़ी बात है। हसन बसरी कहते हैं कि दरसो तदरीस हो या जिक्र और अस्कार की मजलिस, अगर किसी शख्स पर रिक्कत तारी हो जाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते तो वो इस कैफियत को छुपाने के लिए आंसुओं को खुश कर देता, क्योंकि उसको डर होता कि लोगों को पता चलेगा, और अगर कोशिश के बावजूद आंसू ना रुकते तो फौरन वहां से उठ के महफिल से चला जाता कि कहीं लोग ये ना कहते हाय कितना रोता है। इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन वासे कहते हैं, असलाफ में बाज ऐसे भी लोग थे कि तन्हाई में 20 साल तक रो रो कर काट दिए, दिन रात साथ रहने वाली बीवी तक को खबर ना हो सकी कि शौहर अल्लाह के सामने रोता है। इसी तरह इमाम मावर्दी का नाम आपने सुना होगा, उनके बारे में भी वाकत है, बहुत लिखते थे यानी बहुत बड़े मुफस्सिर थे, इखलास और लिल्लाहियत बहुत थी उनके अंदर। कहते हैं कि किताबें लिखते थे लेकिन छपवाते नहीं थे, लिखी छोड़ दी, अपना सारा इल्मी विरसा लिखते और महफूज जगह पे छुपाते किसी को पता ना चले। अब क्या हुआ, पूरी जिंदगी गुजर गई, डेथ बेड पे आ गए। अब जाहिर है कि वफात का वक्त आया तो एक ऐसा शख्स जिस पर उनको एतमाद था, भरोसा था, उसको बुलाया, कहने लगे देखो मैंने फुलां फुलां जगह पे किताबें लिख के रखी हुई, ये सारी मेरी हैं, अब मौत के इस वक्त में तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मेरे बाद इनको आम कर देना, मेरी जिंदगी में आम होती तो मुझे डर था कि कहीं मैं इस शोहरत की वजह से अल्लाह से दूर ना हो जाता, इसलिए मेरे इस विरसे को जाया ना करो और इसको लो। अब डर क्या था भला कि वो किताबें गुम घुमा तो नहीं गई। कहते हैं कि मैं नजा के आलम में हूं, लिहाजा अपना हाथ मेरे हाथ में रखना, अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो समझ लेना कि मेरी किताबों को शर्फे कबूलियत हासिल नहीं हो सका, इसलिए इस सूरत में मेरी किताबों को उठाना और रात में दरियाए दजला में जाकर फेंक देना, और अगर मैं हाथ की मुट्ठी खोले रहा, यानी क्राइटेरियन ले रहे हैं कि मुझे तुम्हें नहीं पकड़ना, यानी इतना इनको अल्लाह पे एतमाद था कि एक बंदे को नहीं पकड़ना, खुद अपने पर अगर मेरी मुट्ठी खुली रही और तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ा तो समझ लेना कि मेरी किताबों को शर्फे कबूलियत बख्श दिया गया और जो मैंने नीयत की थी उसमें कामयाब और वामुराद हो गया। तो वो शख्स कहते हैं कि जब इमाम मावर्दी की मौत का वक्त आया रुख कब्ज होने का तो मैं उनके पास गया, तो मैंने इमाम साहब के सामने अपना हाथ रखा, उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ तो रखा लेकिन ना मेरे हाथ को पकड़ा ना मुट्ठी बंद की, और खुले हाथों से उनकी मौत हुई। तो मैंने समझ लिया कि अल्लाह ने उनकी कबूल की चीजों को और उनकी वफात के बाद फिर उनकी किताबों को आम किया। हम पहले नाम लिखते हैं नीचे, फुलां प्रेजेंटेड बाय, और इन्होंने दिया, ये इनकी डोनेशन है, ये फुलां साहब चेक लेके आए हैं जी पकड़ ले, ये फुलां ने जी इतनी डोनेशन दी है, ये फुलां औरतों को सिलाई मशीनें बांट रहे हैं, पता नहीं क्या बनेगा हमारी नेकियों का, और दुनिया में दिख रहा है जो बन रहा है, बरकत ही चली गई दीन से, अल्लाह ताला हमको माफ करे। फिर इसी तरह हजरत अली बिन हुसैन कौन होंगे भला, जरा सोचिए अली बिन हुसैन कौन होंगे, हजरत फातिमा के क्या लगेंगे। जी हजरत अली बिन हुसैन, आपको पता है कि हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन थे ना, फिर हसन और हुसैन के बच्चों में भी यही नाम सीरीज वाइज चला था, तो ये उनके पोतों नवासों की बातें हैं। रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर रोटी और आटा लाद कर फुकरा और मसाकीन की तलाश में निकलते और फरमाते, रात के अंधेरे में सदका खैरात करना अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा करता है। رات کو نکلتے، اہل مدینہ میں لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا اور وہ بانٹ دیتے. پھر کب پتہ چلا؟ لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ آتا کہاں سے ہے، حتیٰ کہ جب علی بن حسین کی وفات ہوئی تو اہل مدینہ نے جب ان کو غسل دینا چاہا تو ان کی کمر کے اوپر بوریوں کے نشان تھے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بیواؤں اور غریب گھروں میں یہ راشن دیتے تھے، اور اس دن لوگوں کو پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ انہوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا. دکھاتے کیوں نہیں تھے؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے، اب اس پہ بات ہم لمبی نہ کر دیں، لیکن جس نے اللہ کو دکھانا ہے نا وہ بندوں کو نہیں دکھائے گا. مثال دیتی ہوں عورتوں کے لیول کی. لوگ کہتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے، اگر آپ نے اوپر ابائی پہننا تھا تو آپ کو فائدہ کیا ہوا پہننے کا؟ لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا جب دکھانا ہی نہیں تو پھر پہننے کا کیا فائدہ. تو جو دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنے گا وہ تو بیوقوفی لگے گا کہ اتنی محنت کر کے پھر اس نے رکھا، اور جو اللہ کے لیے تحدیث نعمت کے لیے اللہ کی نظروں میں جچنے کے لیے خود کو فریش کرنے کے لیے پہنے گا اس کو کیا لگے کسی نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا. آپ امیجن کریں نا، شادی ہے، کسی بہن نے آپ کے اپنے بھائی کی شادی ہے، آپ نے 10,000 کا جوڑا بھی بنا لیا، کیوں بنایا؟ خوشی کا موقع ہے. آپ نے پہننا، آپ کے شوہر نے دیکھ لیا، آپ کے بھائی باپ نے، بہنوں نے، قریبیوں نے دیکھ لیا. اب وہ جو شادی حال میں 100 عورتیں بیٹھی ہیں یا اس میں کونوں پہ 20, 50, 60 مرد بھی ہیں، کوئی ضروری ہے وہ دیکھیں؟ چلیے 100 نے دیکھ لیا، پھر کیا ہوا؟ سچ بتائیے، آپ کے دل سے سارا شو آف نکل جاتا ہے صرف آپ اپنے لیے پہنتے ہیں. تب پہنتے جب آپ کا دل کرتا ہے، جب دل نہیں خوش نہیں پہنتے. شادی میں جا رہے ہیں، اٹھ کے ایسے ہی پکڑ کے بستہ چل پڑے، جو دیکھ لو میں کون ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اور آپ کا دل تنہائی میں خوش ہے، اکیلے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے ہوں، آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. تو جس وقت انسان دوسروں کی نظروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا، مجھے لگتا ہے پہننے اڑنے کا مزہ ہی تب آتا ہے. اور آپ کو فرق کس سے محسوس ہوگا؟ پہننے کے بعد کی اداؤں سے، چلنے کے انداز سے، ٹم ٹماتے ہوئے چہرے، اور پھر دوسروں کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھ رہے ہوتے میں کیسی لگ رہی ہوں. تسنن نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا ڈسپلے کا نام ہے. آپ پہننے اچھے لگے، آپ کو نہ پتا چلے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں. اور اگر ایک ایک کے سامنے ایک ڈمی بن کے کھڑے ہو کے پوچھے میں کیسی لگ رہی ہوں، تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خفیہ عبادت کیسے کرتے تھے. اسلاف میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ رات کو اپنی بیوی کے پاس جاتے، پھر ان کو سلاتے، اور جب وہ سو جاتی تو کہتے ہیں کہ اس طرح چپکے سے وہاں سے نکلتے جیسے بچے کو ماں باپ چکما دے کر نکل آتے ہیں. یعنی بچے کو سلا کے ماں اکثر اٹھ جاتی ہے نا کہ اب میں کچھ کام کروں، یہ دیکھتے کہ جب بیوی گہری نیند سو گئی ہے اس طرح اٹھتے اور قیام اللیل میں مشغول ہو جاتے کہ بیوی کو پتہ ہی نہ لگتا. اسی طرح ابو ہند نے 40 سال تک سو میں داؤدی رکھا اور ان کے گھر والوں کو اس کا پتہ نہ چل سکا. کیسے کرتے تھے؟ صبح کھانا نہ کھاتے، کہتے میرا کھانا پیک کر دو. جب گھر والے ان کو کھانا ساتھ دیتے تو اس کو جا کر رستے میں غریبوں مسکینوں کو دے دیتے. گھر والے سمجھتے انہوں نے جا کے ناشتہ کر لیا ہوگا، اور گھر واپس کا بات ہے، جب مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے شام کا کھانا کھاتے، اس میں روزہ افطار کر لیتے. ہمارے تو سارے شہر میں شہرت پھیل جاتی ہے کہ فلاں بڑا نمازی اور بڑا روزے دار ہے. اسی طرح ایک بدو تھا، عرابی تھا، مال غنیمت کے سلسلے میں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا، آپ کی اتباع پیروی شروع کر دی. پھر اس نے خواہش کی کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، چند صحابہ کو کہا کہ ان کو ساتھ لے جاؤ. خیبر کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں کچھ قیدی اور مال غنیمت اللہ کے نبی کے پاس آئے. جب آپ نے اس کو تقسیم کیا تو اس میں آپ نے عرابی کا حصہ بھی نکال دیا. صحابہ کو کہا کہ اس کو اس کا حصہ دے دو. وہ بدو بکریاں چرانے گیا ہوا تھا، جب جانور چرا کر واپس آئے تو صحابہ نے اس کا حصہ اس کو دے دیا کہ تمہیں یہ کچھ ملا. اب یہ واپس آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے یہ حصہ لینے کے لیے تو نہیں اسلام قبول کیا، یعنی اس نے ان کو لینے سے ذرا اپنے آپ کو پیچھے کر دیا اور میں نہیں لوں گا. آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو تمہاری مرضی ہے. بدو کہنے لگا میں نے اس مال اور سونے کے لیے تو آپ کی اتباع نہیں کی، بلکہ میں نے تو آپ کی اتباع اس لیے کی کہ مجھے یہاں تیر لگے، یہاں اشارہ کیا حلقوم کی طرح، یہاں تیر لگے اور اس تیر سے میری موت واقع ہو جائے اور مجھے جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے واقعی سچے دل سے یہ بات کی ہے نا تو اللہ تمہاری نیت ضرور پوری کرے گا. اور لکھ لیں یہ بات، مخلصین کو سوچ کے بولنا چاہیے، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اللہ ان سے وہ کام لے لیتا ہے جو اللہ نے لینا ہوتا ہے. یہی ہوا ادھر بھی، कि जब आपने कहा अच्छा तुम कह रहे हो तो देखना ऐसा ही होगा। कहते हैं अभी इन बातों के थोड़ी देर के बाद जब ये शख्स गुजरा, जंग के लिए बाहर लोग मैदान में थे, ये गया और बिल्कुल लोग इसको उठाकर अल्लाह के नबी के पास ऐसे लेकर आए कि इसकी बिल्कुल उस जगह पे तीर था जहां इसने सोचा था। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये वही शख्स है आपने देखा, तो फरमाया कि इसने अल्लाह से सच्चा वादा किया और अल्लाह ने इसके साथ अपने वादे को पूरा कर दिखाया। फिर अल्लाह के नबी ने खुद इसको कफनाया, इसका जनाजा पढ़ा और जनाजा अदा करने के बाद आपने उसके लिए दुआ की कि अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुक, ए अल्लाह ये तेरा बंदा है, खरज मुखार जिरन फी सबीलिक, ये तेरे रास्ते में मुहाजिर बन के निकला, फ़कुतिल शहीदन, फिर ये शहीद हो गया, अना शहीद अला ज़ालिक, मैं इस पर गवाह हूँ। कितनी बड़ी खुशखबरी मिल गई उसको अल्लाह के नबी की ज़ुबान से। फिर इसी तरह से खलूस नीयत के बारे में चंद अकवाल हैं उलमा कराम के, वो शख्स कभी भी मुखलस और सिदको वफा में पक्का नहीं हो सकता जो शोहरत और नामो नमूद की ख्वाहिश रखे। वो अल्लाह का मुखलिस क्यों कर बन सकता है, ये इब्राहिम अदम का कौल है। इसी तरह अहले इल्म का कौल, आलम दीन के लिए जरूरी है वो जब भी वाजो नसीहत करे तो नीयत दुरुस्त कर ले और सही इरादा करके हुस्ने नीयत के साथ कलाम करें, और अगर बजाते खुद अपने कलाम में, ये बड़ा अहम जुमला है, अगर बजाते खुद अपने कलाम में खुद पसंदी और खुद नुमाई की बू आने लगे तो चुप हो जाए और वहीं पर अपनी तकरीर बंद कर दे, और अगर इसको चुप रहने में उजब महसूस हो रहा हो कि देखा कितना अच्छा हूं कि इस बात से खामोश हो गया हूं कि कहीं लोग तारीफ ना करे, देखिए अंदर के राज हैं ये सारे, यानी पहले बोल रहा था तो लगा बड़ा अच्छा बोल रहा हूं तो चुप हो गया, अब चुप हुआ है तो अंदर फिर शैतान आके कहता है कितने तुम नेक लोगों की वजह से चुप कर गए हो, समझ आई ये बात। तो जब चुप होने में लगे तो फिर बोलना शुरू कर दे, और अगर तारीफ का खदशा हो तो भी कलाम ना करे और अपने नफ्स के मुहासबे में काहली और सुस्ती का शिकार ना हो, क्योंकि नफ्स हमेशा खुद नुमाई और तारीफ करवाने को पसंद करता है। हम सब अपने ऊपर लेकर सोचें, किसी ना किसी लेवल पे क्या तारीफ नहीं चाहते। देखिए कुछ लोग कहते हैं ना माल होता है, माल तो नोटों की सूरत में होगा ना, तारीफ भी एक माल ही है, इसलिए उसकी भी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह साहल बिन अब्दुल्ला से किसी ने पूछा कि नफ्स पर कौन सी चीज सबसे बोझल होती है, लिख लें इसको, अच्छा कॉल है इनका। कहते हैं कि नफ्स पर इखलास सबसे ज्यादा भारी साबित होता है, क्योंकि ये असल जुमला, इखलास ऐसी चीज है जिसकी वजह से नफ्स की हक तलफी होती है, यानी नफ्स का हक नहीं मिलता इखलास वालों को, और दिल में इखलास जब पैदा होता है ना तो नफ्स के हकूक का सफाया हो जाता है। अपने लफ्जों में अगर इस जुमला आसान कर दूं तो नफ्स चाहता है तारीफ, इखलास में तारीफ नहीं करवाता बंदा, तो गोया कि आपने अपने नफ्स का हक मारा ना, तो बंदे को सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस पेश होती है ना वो इखलास में होती है, क्योंकि बार बार जो नफ्स को चलता है। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, इमेजिन कीजिए, चले मैं अपना छोटा सा एक टेस्ट लेती हूँ, क्या वाकई आप इतना कुछ और सुन के भी इखलास आया कि नहीं। आप यहाँ बैठी हैं, सब सोचें जो जहां भी बैठा है, कोई गुजरे और आपका पाँव दबा जाए, तकलीफ होती है ना, गुस्सा आता है, पीछे से कोई आपकी चुटिया खींच दे, तकलीफ होती है ना। आप अपने ऊपर लेकर सोचें इन सारी चीजों को, जब हमें जिस्मानी तौर पे कोई दबाता है तो हमें तकलीफ होती है, इसी तरह जब कोई रूहानी तौर पे मुझे कोई कचोका लगाता है, आप बैठी बड़े आराम से कोई आके कहता है चल तू तो मुनाफिक है, चलो तुम तो फासिक हो, तुम तो ऐसी हो, जब कोई मेरी, ये जुमला लिखें, सब लिखें, जब कोई मेरी अना पे चोट लगाता है तो मुझे कैसा महसूस होता है। वही पांव दबाने वाली बात रख ले, जो मुखलस होगा ना दूसरा उसकी अना पे छोड़े, उसके सीने पे भी पांव रख दे, उसको कोई फिक्र नहीं होती। और जिनके अंदर अभी हवा होती है ना, वो कहते हैं मुझे का, मुझे ये समझा, मेरे लिए ये बात है, तो फिर समझ लीजिए कि अभी अंदर कुछ खुन्नस बाकी है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लिया, क्यों, कि मेरी जात है, मुझे जो भी कहते हो कह लो। हाँ जहां इस्लाम पे कोई बात आई जिसे इस्लाम का नुकसान हुआ तो पीछे हुए। आज हमारा क्या हाल है, हम अपनी जात के दिफा में इस्लाम को कुर्बान कर देते हैं। कोई इस्लाम को बुरा कहे हम कहते इट्स ओके, ये तो लोगों की आदत है। कोई कुरान को बुरा करे कहते इट्स फाइन। कोई मुझे बुरा कह के तो देखे मैं तो उसको दुनिया से गुजार दूं। आज ये हाल है हमारा। जितना एक इंसान अपनी जात का दिफा करता है ना, उतना अगर आज दीन का दिफा किया होता तो बात बदल जाती।